राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 दिसंबर 1992 को प्रातः लगभग 5 बजे बीकानेर में हुआ। राम
राम राम राम राम राम राम राम के सिद्धांत के अनुसार साधन किया जाए तो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग ये साधन है, पर साधन करते हुए खास बात है कि ये सब जगत परमात्मा का स्वरूप है। ये बात बैठनी चाहिए भीतर में, अब ये कैसे बैठे हैं? थोड़ा ध्यान दें आप लोग। जैसे सूर्य भगवान है, ऐसे हम माने तो मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं? कि सूर्य को किसी ने बनाया नहीं है, किसी मनुष्य ने, किसी ऋषि मुनि ने, महात्मा ने, किसी ने सूर्य को बनाया नहीं है, बना हुआ नहीं है, है प्रकट हुआ है। तो जिसको हम बनाते हैं वो तो मनुष्य कृत होता है, जो है वो प्रकट होता है। जैसे भगवान ने अवतार लिया राम रूप से, कृष्ण रूप से, तो अवतार लिया तो प्रकट हुए हैं, पैदा नहीं हुए हो। सूर्य उदय होता है तो सूर्य पैदा नहीं होता है, प्रकट हो जाता है। हमारे सामने दिखता नहीं था, दिखना भी जाता है। उत्पत्ति के विषय में एक बात है मार्मिक, अगर उस तरफ ध्यान दिया जाए, विशेष मनन किया जाए तो वो साधन बड़ा बढ़िया हो सकता है। जैसे जितने वृक्ष हैं, जितने धान्य हैं, जितनी जो वस्तुएं हैं, उनके मूल में अपने की उत्पन्न की वस्तु नहीं है। जैसे गेहूं से आप कई तरह की चीजें बना सकते हैं, पर गेहूं को बना नहीं सकते। ऐसे बाजरा से आप कई चीजें बना सकते हैं, बाजरी को पैदा नहीं कर सकते। आलू की कई चीजें बन जाती हैं, आलू को आप बना नहीं सकते। चनों की कई चीजें बन जाती है, पर चने को आप बना नहीं सकते। किसी मनुष्य के सामर्थ्य है कि बाजरे का दाना बना ले, गेहूं का दाना बना ले, आलू बना ले, तो ये खूब गहरी बात सोचो, बड़ी बढ़िया बात है कि मनुष्य बना नहीं सकते। मनुष्य पैदा होता है तो उनका जो रजवीर है उनको बढ़ा सकते हैं क्या अपने? जिससे पैदा होता है ये शरीर, इनका कारण जो बीज है वो हम बना सकते हैं क्या? कोई मिलान से पैदा हो जाती चीज, आलू बो देते फिर आलू हो जाता, लग जाता फिर आलू, कई आलू हो जाते हैं, एक मनुष्य कई मनुष्य हो जाते हैं, ये बात हो जाते हैं। पर मूल में मनुष्य का बीज आप हम बना नहीं सकते। गेहूं, बाजरा, जो चना ये और नीम है, वृक्ष पीपल है आदि का भी ढाक, जितने वृक्ष है, जितने दाने हैं, जितने सब्जी है, जो कुछ चीजें हैं, उनकी मूलभूत धातु को हम बना नहीं सकते, उनको परिवर्तन कर सकते हैं, दो को मिला सकते हैं, कर्म कर सकते हैं, कर्म करके दूसरा फल लग जाए, उसमें कुछ विकृति हो जाए, उस और से हो जाए, ये तो हम कर सकते हैं, पर मूल तत्व को बना नहीं सकते। क्या जो चाहिए आपकी शंका हो तो बोलो भाई। तो जिसको नहीं बना सकते स्वतः बना, वो ही तो ईश्वर है, जिसको बना नहीं सकते। तो ये हम नहीं बना सकते, उनके विकृति कर सकते हैं, आपस में मिलान कर सकते हैं। गेहूं की कई चीजें बढ़ जाए, आलू की कई चीजें बढ़ जाए, चनों की कई चीजें बढ़ जाए, ये खूमसा में बेचते हैं ना, बहुत तरह की चीजें बनती है, जोरदार चना जोरदार होता है, तो ये कई चीजें बन जाएगी, परंतु चना मूल में तो बढ़ा नहीं सकता है। ऐसे मूल में तत्व को हम बना नहीं सकते, तो वो ईश्वर का स्वरूप है, वो ईश्वर बनता नहीं है। की बात ठीक है ना? तो हमारा बनाया हुआ नहीं है, वो स्वतः है, वो ईश्वर है। अब उससे सृष्टि पैदा हुई तो वही तो हुआ, गेहूं के दाने से पौधा पैदा हो जाता है, फिर गेहूं हो जाता है, तो वो गेहूं वही तो अनेक रूप से प्रकट हुआ है। रज बीज तो अनेक रूप से स्त्री पुरुष छोटा बड़ा हुआ पैदा होते हैं, पर उसको बना तो नहीं सकते। जिसको नहीं बना सकते अनादि है, वही तो ईश्वर है। इस तरह से अर्जुन ने जब पूछा कि महाराज मैं कहाँ कहाँ चिंतन करूं, दसवें अध्याय में प्रश्न पूछा, केशु केशु भावेशु चिंतियोसि भगवान माया, किन किन भावों में मैं चिंतन करूं, योगम और विभूतन से कहते योग भी कहो और विभूति भी कहो, योग और विभूति है पदों पर हमने काफी चिंतन किया, विचार किया है, ये जल्दी जल्दी भी बख में बात नहीं आती है, कब्जे में आ जाकर कह दे वर्णन कर दे ऐसी बातें है। टीका करोगे टीका देखने पर भी इतने नहीं उसको कुछ समझने से इस तरह से बड़ी मुश्किल पड़ती है बात। तो योग नाम है उस सामर्थ्य का, और विभूति नाम उनसे प्रकट होने वाली अनेक तरह की विभूतियां ऐश्वर्य, उसका नाम विभूति है। तो भगवान ने विभूतियां बताना शुरू, हम आत्मा उड़ा के सर्वभूता से अलग हुए, अंत में यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहं अर्जुन, संपूर्ण भूतों जो बीज है वो मैं हूं। संपूर्ण का मात्र संसार का बीज मैं हूं। अब बीज होता है, जो बीज होता है उस बीज में दो कमियां होती है, एक तो बीज वृक्ष से पैदा होता है, एक कमी तो ये पैदा होता है, और एक कमी यह है कि बीज है वो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है। जिस बीज का पौधा पैदा हुआ तो जैसे तना है, तो तना को जड़ और गर्मी ये और खाद मिल करके और एक वो फूल जाता है, पहले फूल जाता है तो उसे प्राण संचार हो गए, प्राण संचार हुए फिर अंकुर निकल आया, अंकुर दो अंकुर निकल फिर तीजा निकल चौथा वृक्ष बन गया। ऐसे बीज से वृक्ष बनता है, तो वो बीज रहता नहीं, उसका वृक्ष पैदा हो गया, अब बीज नहीं रहेगा, बीज मिट्टी में मिल गया, बीज कुछ नहीं रहा। चना होता है, चने के जो अंकुर से सामने एक तंत्र सी होती है छोटी सी सर में, उसके भीतर वहाँ बीज है, वहाँ जीव वहाँ है, पिछड़े कट जाए तो यू जाएगा, वो कट जाए तो उगेगा नहीं, पूरी दाल रह जाएगी, उगेगी नहीं, वो अंकुर है बीच में, वो है जीवनी शक्ति। तो वो अंकुर है, वो ही फूल करके अंकुर फिट करके अंकुर निकल करके बन जाता है, वृक्ष बन जाता है, वृक्ष पे पौधा बन जाए, पौधे में चरण लग जाएंगे। तो बीज में दो बात होती है, तो भगवान ने क्या से कहा है कि मैं बीज हूं। अब बीज कैसा है तो गीता माया है, निधानम बीजम अव्ययम, अपने को बीज बताया, अपन अव्यय बीजम सर्वभूता नाम, सब भूतों का बीज मैं हूं, अपन अव्यय बीज हूं। और बीजम विद्धि सनातनम, और सनातन बीज हूं, मानो पैदा हुआ बीज नहीं हूं मैं, और पैदा हो जाने पर नष्ट नहीं होता हूं, संसार उत्पन्न हो जाता है, नहीं हो जाता, मैं बीज वैसे का वैसे रहता हूं। बीज में दो के में आई ना, एक तो उत्पन्न होता है वृक्ष से, और एक वृक्ष उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। तो संसार मात्र का मैं बीज ऐसा हूं कि जो बीज उत्पन्न होने वाला नहीं हूं, सनातनम सर्वभूतारम बीज मिजी सनातन बीज, सनातन बीज हूं मैं, अनादि बीज हूं। और बीज में सात में नौवें अध्याय में और दसवें अध्याय में विभूतियों का वर्णन है, भगवान के ईश्वर जी का विलक्षणता का वर्णन है। आगे पंद्रहवें में सात नौ दस और पंद्रह चार अध्यायों में विभूतियों का वर्णन साधक संजीवनी में लिखा है। तो उन विभूतियों के वर्णन में बीज का वर्णन हुआ, तो बीज माम सर्वभूतार सनातन, सनातन बीज मेरे को समझ साथियों ने कहा। नौवें भाग बीज अभी बीज का, दसवें बता दिया बीज, जितना भी सर्वभूतार जितना सबका बीज में ही हूँ, मानो मेरे से ही मात्र संसार पैदा होता है, और मेरे में ही रहता है, मेरे में लीन हो जाता है। जैसे मिट्टी से अनेक तरह की चीजें पैदा होती है, और मिट्टी भी मिट्टी रहती है, अंत में मिट्टी बन जाती है, सब मिट्टी बन जाती है। ये जितने शरीर दिखते हैं, जितने ये कपड़े दिखते हैं, सब मिट्टी से पैदा होते हैं, और मिट्टी में रहते हैं, अंत में मिट्टी हो जाते हैं, फट करके जल करके घिस करके किसी से अंत में मिट्टी हो जाते हैं। तो मिट्टी तो हुई सभी, इस वास्ते संसार मात्र के जितने बीज हैं वो भगवान से पैदा हुए, तो सबके बीज भगवान हुए, और अंत में भगवान ही बीज रहेंगे। तो पहले से ही भगवान है, पीछे भी भगवान है, पीछे भी भगवान रहते हैं, तो वास्तव में भगवान ही है। बीज में उत्पन्न होना नष्ट होना ये बीज के बीज है, ये बीज के बीज है, ये आदि बीज नहीं है। यच्चा भी सर्वभूतानां बीजम, जो संपूर्ण प्राणियों का खास बीज हो मैं हूं। तो बीज अविनाशी बीज हो, अव्यय बीज हूं मैं। बीज में बीज पैदा होता, बीज में वृक्ष होता, वृक्ष में बीज होता, ऐसे परंपरा चलती है। तो सबके मूल में बीज हुआ, तो जितनी बीजों से चीजें होती है वे सब बीजों से होती, बीज रूप ही है। तो बीज रूप है तो वही हुए ना, जैसे गेहूं है तो गेहूं की खेती को भी गेहूं है, ये क्या है गेहूं है सब। अभी कोई केवल शहर में रहने वाला हो और एक खेती को बतावे, खेत में जाकर ये गेहूं है, कोई हमारे को ठगते हो गया, गेहूं का बोरा हमने देखा है, ये गेहूं है तो घास है, ये तो सीधे से घास है, ये गेहूं है, बनाओ रोटी इसकी कैसे बना लोगे। मैं खेती करने वाले उसको गेहूं कैसे है, घास को गेहूं कैसे, घास को पत्ते निकलते हैं, निकलती घास है, हुआ गेहूं घास है। बाजरी बाजरी है, ये क्या जौ है, ये तो माठ है, केवल मांस ही देखा है, वो व्यापार देखा, वो के मांस के समाज हमने देखे है, बोरा का बोरा खरीदा है, बिक्री किया है, क्या ठगाई करते हो, ये मांस कैसे है? पर खेत वाले कैसे, ये मांस है, ये बाजरा है, ये गेहूं है, कैसे है? तो बीज के सिवाय भी नहीं है, गेहूं ही है और अंत में गेहूं ही रहेंगे। अंत में परिणाम क्या होगा? गेहूं होगा। पहले गेहूं है, अंत में गेहूं है, बीच में क्या है? खेती है। इस तरह से इस संसार के पहले आरंभ में क्या है? परमात्मा है। और शिष्य थे शेष संज्ञा, ये भागवत में शेष बाकी क्या रहता है? परमात्मा रहते। इस बात से शेष उसका नाम है शेष, मानो शेष बाकी, बाकी क्या रहेगा? परमात्मा रहेंगे और क्या रहेंगे? क्यों? परमात्मा ही पहले थे, परमात्मा ही अंत में रहेंगे। तो बीच में चीज कहां से आई भाई? दूसरी दूसरी चीज कहां से आई? तो ये गीता का सिद्धांत है, वासुदेव सर्वम। गीता के समान कोई दर्शन शास्त्र है नहीं, ये हमें अब समझ में आता है। हमारे वर्ष बीत गया, मैं गीता कहते हुए, पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, सुनाते हुए, बांसते हुए, अब वो समझ में आती है कि गीता क्या चीज है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा, बहु नाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों का अंतिम जन्म है वो, उस जन्म में भारत जन्म नहीं होगा उसका। क्यों जन्म नहीं होगा? कि वासुदेव सर्वम उस जन्म ने कहा, वासुदेव तो होगा जन्म में, क्या बताओ, जन्म सही नहीं। जब तक परमात्मा से संसार अलग दिखता है तब तक परमात्मा का ज्ञान नहीं हुआ। जैसे गेहूं की खेती हो, लोग कहते हैं गेहूं खड़े हैं साहब, देव गेहूं खड़े हैं, गेहूं को पानी दे दो गेहूं खड़े हैं। पर जो गेहूं बड़ी चीज देखे है वो कैसे मान ले गेहूं? हमने गेहूं देखे नहीं है क्या? हर देखा को, ये तो घास है, अरे अरे घास है, पर जानने वाले के घास नहीं है, गेहूं है। ये घास थोड़े जो पशु खाया करे वो घास नहीं है, ये गेहूं है। क्योंकि पहले गेहूं पीछे गेहूं तो बीच में गेहूं ही हुए। ऐसे पहले परमात्मा पीछे परमात्मा, बीच में परमात्मा ही हुई, दूसरी आई चीज कहां से बताओ? तो साधन करना हो तो इस मूल चीज को पकड़नी चाहिए। अयम ही सर्वकल्पानां सद्धिचिन्नो मतो मम, एकादश स्कंद में आता है। जितने जो साधन है सबसे बढ़िया साधन ये है कि मद्भाव सर्वभूतेषु, सब प्राणियों में मद्भाव मेरा, मनो वाक काय वृत्ति भी। मन से चिंतन करो तो परमात्मा है, काया से सेवा करो तो परमात्मा से विषय हो, और दृष्टि से देखो तो परमात्मा रूप से देखो। उपनिषद में तीन दृष्टांत आते हैं, एक मिट्टी का आता है, एक लोहे का आता है, एक सोने का आता है। तो तीन दृष्टांत का मतलब क्या है? कि मिट्टी से बने हुए बर्तन अलग अलग होते हैं, मटकी अलग है, घड़ा अलग है, छकोरा अलग है, ढक्कन अलग है, अलग अलग कार्य होते हैं। ऐसे भी ढक्कन में घड़ा भर लावे पानी भर लाएंगे नहीं बता सकते। तो कार्य में अलग अलग होंगे, आकृति अलग अलग होगी, मूल्य भी अलग अलग होगा, पर तो मिट्टी से अलग कुछ चीज है। ऐसे सोने के बने हुए गहने है अलग अलग है, कोई हाथ में पहने, कोई नाक में, कोई कान में, कोई कंठ में, अलग अलग पहने, उपयोग अलग अलग है, नाम अलग अलग है, ये हार ऐसा, ये कंठ है, ये करा है, ये कुंडल है, नाम भी अलग अलग है, आकृति भी अलग अलग है, तोड़ भी अलग अलग है, मूल्य भी अलग अलग है, दिखने में सरसे दिखता है, परंतु सोने के सिवा है क्या कुछ भी? सोना तो एक ही है, ऐसे लोहा एक ही, कोई चाकू है, कोई कैंची है, कोई छुरा है, छुरी है, तलवार है, तरह तरह के अस्त्र शस्त्र होते हैं, पर सिवाय लोहा और क्या है? तो सब लोहे के बने हुए अस्त्र शस्त्रों को लोह रूप से देखना ये ज्ञान है। सोने हुए सोने की बनी हुई चीजों को सोने रूप से देखना ये ज्ञान है। ऐसे परमात्मा से पैदा हुई सृष्टि को परमात्मा का स्वरूप जानना ये ज्ञान है। बहुनाम जन्म नाम अंते। अब अगर जन्म कैसे होगा? कारण गुण संगो जैसा सब जो गुण है, गुण है प्रकृति के, प्रकृति में पुरुषों से विद्यनादि उपाय भी, प्रकृति और पुरुष दो है। अब प्रकृति से गुण पैदा होते हैं, गुणों के संग से जन्म होता है गाड़ी, प्रकृति से अतीत गुण नहीं होते, गुण नहीं होते वहां परमात्मा ही रहते हैं। अब परमात्मा में जन्म कैसे हो? विकार सब प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। पुरुष से तो उसमें क्या होता है? पुरुष तो सुख दुखान भोगते भोगता पर हेतु होता है, पर वो हेतु कौन सा? प्रकृति से भोगता होता है, और प्रकृति में से नहीं तो भोगता नहीं रहता, न करता रहता है न भोगता रहता है, स्वतः है जुड़े जैसा है। तो ये प्रकृति के संबंध से ये बात हुई, मई वंश हो जीव था मेरा अंश मन प्रकृति स्थानीय मन स्थानी, ये प्रकृति में सूत्र होने को अपना मान लेता है, अब जन्मता है मरता है। नहीं तो है जो कहती है, अब बीस तरह तरह के पैदा भी हूँ, मूल बीज तो परमात्मा है, और मूल परमात्मा शेष रहेंगे और कोई रहेगा नहीं। इस वास्ते चाहे बीज रूप से हो, चाहे किसी को घास है वो गेहूं रूप से है तो ही गेहूं है, और खेत रूप से है तो ही गेहूं है, अंत में गेहूं बढ़ गया तो भी गेहूं है। वहां गेहूं का खेत है, गेहूं खड़ा देखो, ये गेहूं खड़ा है, सब कहते हैं गेहूं खड़ा है, कहते भी है, देखते भी है, पर देखे तो देखे घास है, जानकार गेहूं खड़ा है सब, गेहूं की खेती बड़ी अच्छी है, गेहूं खड़े बहुत खेत, खेत अच्छा गेहूं से भरा हुआ, गेहूं से भरा है, घास से भरा हुआ है। तो ज्ञान है, गेहूं से भरा हुआ खेत है गेहूं ही देखना, ये है ज्ञान, और घास है ये है अज्ञान। अब घास में गेहूं एक तक कैसे करोगे? गेहूं से रोटी बढ़ जाए, घास से रोटी बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाती गेहूं जैसी बढ़ जाएगी। क्यों काल में घास की भी रोटी बना दे तो क्या करे, खाने को कुछ नहीं हो तो वृक्षों तोड़ गेहूं बन रोटी बना रहे। परंतु गेहूं चीज तत्व है वो गेहूं है, ये ऐसे जगत रूप से दिखता है, ये परमात्मा का स्वरूप है। तो परमात्मा का स्वरूप है ये क्रिया में कैसे हो? कोई सेवा करने से आएगा, इसकी साधना है तो सेवा होगी। तीन चीज है, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। तो केवल सेवा करना है, कर्मयोग है ये, अपने शरीर के द्वारा और वस्तुओं के द्वारा केवल से भगवान का पूजन करे। यथा प्रवृत्ति भूषा नाम ये सर्वमिदंतम स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ सिद्धि मानव। जिससे संसार पैदा हुआ, जिससे संसार चेष्टा करता है, अपने कर्मों के द्वारा का पूजन करके परमात्मा प्राप्त हो जाता है। तो संसार में केवल भगवान की पूजा करना है, हरेक काम करना है, स्वकर्मा तम अभ्यर्थ से अपने कर्म पूजा करो। ब्राह्मण अपने ब्राह्मणोचित कर्म से पूजा करो, क्षत्रिय क्षत्रियोचित कर्म से पूजा करो, वैश्य वैश्योचित पूजा कर्म से पूजा करो, शूद्र शूद्रोचित कर्म से पूजा करो। तब प्रवृत्ति पूछा राम ये स्वरूप मिलंतम स्वकर्मणा समय भेद सिद्धि बिंदती मानव सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। तो ये वो कर्म योग और भक्ति योग क्या कि हमारे प्रभु हैं, प्रभु समझ करके होंगे भीतर में, बस पूज्य भाव करके उनके पूजा करो, आरती करो, नमस्कार करो, ये करो तो ये भगवान हो गया। भागवत माया विसर्जय स्मयमान स्मान विषम वीरान से स्मयमान दूसरे हंसी डरो तो छोड़ दो उसको और डरो मत, और दृष्टि क्या है वो दृष्टि छोड़ दो और लज्जा लज्जा भी छोड़ दो, तो करे क्या दृष्टि भी छोड़ दो लज्जा भी छोड़ दो, कर पर मैं घूमो आश्व चांडाल गोकरम कुत्ता चांडाल गौ और गधा नाम लिए दंडवत भूमो वर्ष करे सौ को दंडवत करो रे ये साथ भगवान आए स्व कुत्ता आ जाए तो चांडाल आ जाए तो गौ आ जाए तो गधा आ जाए चार नाम लिए आश्व चांडाल गो खरम दंडवत भूमो प्रमेत लंबा पड़ गया दंडवत करे ऐसे भाग भगवान है कुत्ते रूप से भगवान आए गाय रूप से भगवान आए मनुष्य रूप से भगवान आए मैत्र रूप से भगवान आए मुसलमान रूप से भगवान आए ईसाई रूप से भगवान आए ये पहाड़ रूप से भगवान आए वृक्ष रूप से भगवान आए खम वायु मग्निम शरीरम जय महीन जय ज्योति दिशो ज्योति सत्वादि दिशोमादि सर समुद्रा सारे शरीरम इस कुंज भूतम प्रमेद अन्य अन्य प्राप्त करो योग भक्ति योग और तत्व से मदद वो ही है, ये दीखता वो नहीं है तत्व से वो है, ये बर्तन दीखता नहीं है मिट्टी है, ये शस्त्र से दीखते है उस लोहा है, और ये कई तरह ज्ञान दीखते सोना है वो सोना जानना ही है ज्ञान योग। ज्ञान योग करो चाहे भक्ति योग करो चाहे कर्म योग करो, योग होना चाहिए परमात्मा के साथ योग में सब एक, ज्ञान योग भी भक्ति हो योग, भक्ति योग भी योग, कर्म योग भी योग, ऐसा तुम योग उच्चते योग है, योग शास्त्र में मिल जाए वो योग शास्त्र में मिल जाए तो योग सेवा करो सब भी। अब ये सीधी सीधी बताइए कि संसार में रहो तो अपने से बड़ों की भी सेवा करो, समान की भी सेवा करो, छोटों की भी सेवा करो, उनका सेवा नहीं तो प्यार कर लो, आपस में स्नेह कर लो, आपस में पूजा कर लो, बड़ों का लेकर आदर कर लो, उनकी आज्ञा पालन करो, उनको सुख पहुंचाओ, उसमें काम करना केवल क्रिया करना ये तो काम है और उनको सुख पहुंचाना सेवा है, और पूजा करना है ये पूजन अर्चना है, चंदन पुष्प आदि से पूजन करना और भोजन आदि करना सेवा करना है, और काम घर का धंधा कर देना मदद कर देना ये धंधा करना है, तो धंधा तो नौकर भी कर सकता है, सेवा पूजन तो भक्ति कर सकता है, बात वही है, बात एक ही है, भाव में भर गए काम नौकर से काम करा काम कर देगा, पर भाव तो पूजा करेगा, पर पूजा में और काम में कितना फर्क है। आज नौकर होता है वो रोटी बनाकर आपको भोजन दे देता है, वो नौकर देता है, और एक आप जाकर के किसी साधु को भोजन देते हो बड़े प्रेम से, तो भोजन देने में क्रिया तो एक ही हुई, कोई ब्राह्मण रसोई बना करके महीना देता है बस बड़ा ही भोजन दे देता है, तो भोजन दिया तो ये क्या काम किया है। और आप जाके जिस संत को कहीं बैठे वहां जाकर भोजन देते हो तो ये सेवा हो जाएगी, तो काम धंधा सेवा पूजा बात एक ही है, परंतु जो जो भगवत भाव ऊंचा होगा अपना त्याग होगा तो वो ऊंचा दर्जा हो जाएगा। तो स्व पूजा कहा भगवान ने, स्वकर्मात्म अभ्यर्थ्य सेवा पूजा करके परमात्मा को प्राप्त कर लो, तो सब में परमात्मा देखो कि परमात्मा है।
ये दर्शन है
हमारा, ये दर्शन है। इसको दर्शन कैसे?
महाराज जी श्रद्धा है तो सेवा है, अन्यथा काम है।
अच्छा,
अगर श्रद्धा है तो वो सेवा हो गई।
हाँ,
अन्यथा सेवा नहीं
हो। काम हुआ, काम तो हुआ, इससे तो बढ़िया ही हुआ। काम कर दिया किसी का, तो भी तो वो है, ब्याह ऊपर आया, पानी पा दिया, सेवा हो गई। वो शिशु को पहुंचाना सेवा हो गई। दंगा कर देना काम हो गया, झाड़ू दे दिया, मकान साफ कर दिया, तो करी तो सेवा ही। वो करे तो काम तो किया, उसने काम से सेवा होती, सेवा से पूजा होती। क्यों भाव बढ़ेगा ना, पूजा में भाव होता है। अब एक तो हो भोजन देता है, एक पक्षा भी करता है। और महाराज एक भगवत रूप से देखता कि उस साक्षात जैसे नामदेव जी महाराज ने वहां अपने रसोई बनाई, तीर्थ यात्रा में गए थे तो भिक्ष ने रसोई बनाई, रोटी बनाकर रखी। वो घी लाने को गए, इसमें कुत्ता आया भागा कि महाराज चौपड़ ने तो रूखी रोटी खाते हो। भगवान प्रकट हो गए, वो तमसा नहीं भीतर से कि ठाकुर जी के तो भोग लग रहा, ठाकुर जी आए है। महाराज रूखी थोड़ी घी है, अपने कुत्ता दे घी गालो गए। पीछे तो सुना ले तो अपने काम की नहीं, आराम से तो खा लो कम करो। पीछे तो सुना ले तो अपने काम की नहीं, आराम से तो खा लो कम करो। काम तो खा गया, वो खाने में ले गया तो ठीक है, खा रहे तो सारने की उम्र क्यों मर गए यार, दौड़ते है तो रोटी खा रहे तो ये हो गए, काम धंधा हो गया उनका। और बड़ी अच्छी बात है, काम आ गई, कुत्ते काम आ गई, बड़ी सेवा हो गई। और भगवान महाराज यही किए पर उसने रुकी है, महाराज आपकी तो भोग लगाना है और करना क्या है, ये रुकी।
रामदेव जी महाराज की पक्की हुई दृष्टि थी,
पक्की दृष्टि। तभी तो घर में आग लग गई, घर सारे घर में आग लग गई, शादी को सभी लग रही है। ओह आप हुआ, बड़ा खुश हुआ, बाहर से इसमें घिचर रखी, इसका भी भोग लगाओ, महाराज इसका भी भोग लगाओ। ठाकुर जी भोग लग रहा है, भोजन कर रहे हैं ठाकुर जी। और क्या पता कि घर का मालिक मैं, तो घर में बिना पूछे मैं आ सकता हूँ, मेरा मालिक आ सकता है, दूसरा आवे कैसे, घर मेरा है। मालिक को तो पूछने की जरूरत नहीं, तो मैंने पूछा ही नहीं रहे, आप पता कि भगवान है, सीधी पहचान है। सलाई दी दी पाने लगे, पाने खाने लगे, तो भगवान आए। तब नामदेव की छान सवाई, तो आप पेड़ों को भोग लगे तो पेड़ों का प्रसाद बतासा भोग लगा, बतासा भोग मिले, भगवान के घर भोग लगा तो घर दिया भगवान ने प्रसाद दिया। क्यों भोग लगा दे भगवान ने, तो आग दे डाकन बेटा लग दे बताओ। आग चला दी नहीं जन बेटा, वो तो भगवान का भोग लगाया, सब घर का भोग लगा दिया भगवान के बेटा, भोग लगाया तो प्रसाद ले, सब प्रसाद प्रसाद, जो चीज भोग लगा वही प्रसाद ले।
इसमें भाव की
भाव की भाव और तत्व दोनों है, भाव तो भक्ति में और ज्ञान में तत्व। ज्ञान में तत्व देखना कि मूल चीज क्या है, मैंने तत्व की भी कही भाव की भी दो बताइए। तत्व से देखो तो वही चीज, तो तत्व से देखो तो परमात्मा, भाव से देखो आशो संडाल वो करोगे ये भाव से। अरे ऐसे सेवा करो तो काम धंधा करो तो भी अच्छा है, और सेवा करो और पूजा करो ये कर्म योग हो गया, और भाव हुआ भगवान के भक्ति योग हो गया, और तत्व से तत्व परमात्मा ही है तत्व ज्ञान हो गया, तो ज्ञान योग भक्ति योग कर्म योग तीन योग श्रेयमय प्रभुता की गीता बाहर है। अब इसमें कर्म योग छोटा है, भक्ति योग छोटा है, ज्ञान योग छोटा है, मोटो तो कुछ नहीं, यही वही परमात्मा किसी से जोड़ो ये संप्रदाय है अलग अलग। अज्ञान मार्ग वाले ज्ञान से ऊंचा माने, भक्ति वाले भक्ति ऊंचा माने, कर्मी को कर्मी ऊंचा माने। वास्तव में तत्व को प्राप्त करना है बात ये। नारायण 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 नारायण।
आज महाराज जी नए प्रकार से सिद्ध हुआ ये भौतिक और तार्किक दृष्टि से सिद्ध होगा कि परमात्मा ही परमात्मा,
परमात्मा ही परमात्मा है। भाव से देखो तो परमात्मा ही मैं, एक हम बहुत श्याम भगवान का, एक मैं बहुत रूप से हूँ, तो एक बहुत रूप से बहुत दूसरा कैसे हो जाएगा? भगवान ही तो हुए भक्ति से अभी, और जगत रूप से हुआ तो हुआ तो परमात्मा ही, बीस परमात्मा होने से एकदम सही। तब तो है साधन, जगत को दूसरा देखो और अपना दूसरा देखो तो साधन नहीं हो बढ़िया है। साधन हो जाओ तो शादी की प्राप्ति हो जाएगी, साध्य बिना बिना साधन के शादी की प्राप्ति कैसे होगी? तो साधन करो, चाहे तत्व से परमात्मा समझ करो, चाहे स्वरूप से परमात्मा समझ करो, चाहे भाव से भाव से करो, अपनी मर्जी है जो इनमें तीनों को बढ़िया लगा वो करो। तीनों भी समझो कि तत्व से परमात्मा है और भाव से वही आदर्श है, उनको सुख पहुंचाओ और फिर तत्व से परमात्मा है। ये दूसरी दिशा की बात है।